के लिए ये भी महामंत्र है। जब तक कि ये पांच तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य गौचंद्र की शक्ति गदाधर जी और उनके भक्त श्रीनिवास आदि, इनकी कृपा नहीं होने से ये महामंत्र नहीं होगा। होगा तो अपना पूरा रूप नहीं दिखलाएगा और पूरा कृपा जो प्रेम है ये नहीं होगा। इसलिए सचिनंदन गौर हरि की कृपा हो, बलदेव प्रभु जी से अभिन्न नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हो, जो जगाई मधाई को मद के कलसी की वो लग गई और रक्त गिरने लगा तो भी उसको प्रेम दे दिया। गदाधर जी जो चैतन्य महाप्रभु को सब समय वशीभूत रखते हैं, अद्वैताचार्य जो चैतन्य महाप्रभु को बुलाया प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए, और शिवास आदि शिवास मान्य नारद जी, इनकी कृपा प्रार्थना के लिए ये पंच तत्व एक महामंत्र है। इसलिए इसको पहले कीर्तन करके के तब महाप्रभु ये महामंत्र हरे कृष्ण हो, तब वो जल्दी से फल देता है। अभी आप लोग ये पंच तत्व कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे ये मंत्र के समान ही इसको बोलिए। कोटि कोटि वर्षों तक जन्मों तक आराधना लोगों ने की, जब मैं ब्रज में गोपी होकर के आऊँ और कृष्ण की मैया बनूँ या कृष्ण की मैया की सहेली बन, और हमारे घर में कृष्ण आए चोरी करने के लिए, यह कीर्तन इसका जागता जुगता रूप है। सभी प्रार्थना कर रही है जय कृष्ण हमारी गली में आने। गली का मतलब दो है, एक तो उस गली में जिसका उसका घर, अरे रण छोड़ देना, इतने के आदमी के लिए काफी बिगड़ जाता है। गली एक वो है जिस गली से कृष्ण जा रहे हैं, कुंज गली है, सेवा गली है, मान गली है, दान गली है, और कितनी गलियां हैं,
प्रेम गली है,
जसोदा जी की गली है, ललिता जी की गली है, विशाखा जी की गली है, सबकी गली है। वो करिए हमारी गली में आना जिसमें उसका घर पड़ता है, और हमारे घर में आकर के हम रखे हैं माखन और मिश्री,
भोग लगाना
और मधुर बंसी बजाना। मधुर अपना ये सुंदर चांद जैसा मुखड़ा दिखलाना, ये प्रार्थना करती हैं। यदि घर में उसके घर में गए कृष्ण और मक्खन चुरा रहे हैं, एक भावना ऐसी दिखला रहे हैं ये चोरी नहीं हुई, वो चोरी इसके बहाने से दिल की चोरी कर रहे हैं, यही कृष्ण के अवतार का परम रहस्य है। और कोई भी अवतार ऐसा नहीं दे सका, राम भी नहीं दे सके, कोई भी ऐसा रूप नहीं है भगवान का जो दे सका। इसलिए कृष्ण प्रेम के रूप हैं और गोपियों के प्रेम की चोरी करते हैं, और किसी का अधिकार नहीं है जिसके प्रेम का चोरी करें। मक्खन के लिए कमी नहीं उनको, मक्खन का लोभ भी नहीं, ये तो ऊपर से दिखलाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझा जाए कि वो चोरी करते हैं। इसलिए कृष्ण की समस्त लीलाओं में प्रेम भरा पड़ा है। अभी एक और पद सुनाएंगी, आप सुनिए।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विजे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
बहुत सुंदर कीर्तन हुए, अच्छे अच्छे पद कृष्ण के संबंध में बहुत मधुर स्वर से हुए। मैं थोड़ी सी उनके भक्तों की कुछ कथाएं आप लोगों के सामने निवेदन करता हूं। यदि उसमें से थोड़ी सी भी शिक्षा यदि आप लोग ग्रहण कर सकें तो जीवन कृतार्थ और सफल हो जाएगा। ये बांके भगवान है, उनके भक्त भी बांके होते हैं। नारद जी भी एक ऐसे बांके भक्त हैं।
टेढ़े
उनका चरित्र समझ पाना बड़ा भारी कठिन है। जगत में आदर्श भक्त हैं, जितने देख रहे हैं जगत में अच्छे अच्छे भक्त हैं, सब नारद जी के शिष्य हैं। प्रहलाद जी, ध्रुव जी और भी जितने, यहाँ तक कि पशु पक्षी तक भी नारद जी के सारे लोग भक्त हैं। सबको मंत्र और दीक्षा दिया। इनका जीवन भी कुछ ऐसा कठिन दुर्लभ है, सहज गम में नहीं है, बोध गम में नहीं है। अधिकांश लोग नारद जी के चरित्र को सुन करके कहते हैं कि ये घर को तोड़ने वाले हैं, घर में आग लगाते हैं और जुदा जुदा लोगों को विभक्त कर देते हैं। नारद जी का चरित्र भागवत में मिलता है। एक शूद्र के घर में पैदा हुए, इनकी मैया अच्छे अच्छे घरों में जाकर रसोई बनाती, चौके देती, बर्तन मांजती और किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करती है। उसको एक बच्चा था छोटा सा 5 वर्ष का, उसका पालन पोषण करती। बाई चांस उस गांव में सनक सनंदन सनातन जैसे लोग ऋषि महर्षि वर्षा काल में वहां पर उपस्थित हुए। गांव वालों ने उस महिला को ऋषियों के पत्ते साफ करने के लिए घर में वहां पर आश्रम में झाड़ू देने के लिए कुटियों में उसको नियुक्त कर दिया। उनके चौके बासन करती, साधु लोगों को 4 महीने तक वर्षा काल में कहीं पहले नहीं जाते थे। एक जगह में कुटी निर्माण कर या जहाँ भी किसी प्रकार से हो रह करके भगवान का भजन करते दूसरों से कराते थे। बच्चे का नाम नारद था। मैया चौका भाषण कर लेती और फिर बच्चे को लेकर के चली जाती घर। धीरे धीरे ये बच्चा भी उन साधुओं में ऐसे मिलजुल गया। छोटा सा बच्चा, देखने में सुंदर सुकांत और बड़ा निर्भय, साधु संतों की टोली में पहुंच जाता और बड़े लोग स्नेह करते। कुछ खा रहे उस बच्चे को थोड़ा सा दे दिया, पत्ते में खा रहे हैं और पत्ते में जूठा रह गया, बड़े प्यास से उसे बुलाया, ये तुम प्रसाद ले लो। उनका प्रसाद बड़ा भारी शक्तिशाली होता है। यदि साधन भजन करना है तो 3 चीजों को जरूर धारण रखना, संतों की चरण धूलि, संतों का चरण धौत जल, भगवान के चरणामृत से भी बलवान होता है और भगवान का प्रसाद तो महाप्रसाद होता है। अब भक्त लोग जो महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं उनका उच्छिष्ट होता है, उसको महा महाप्रसाद कहते हैं। यदि भक्ति में जाने की लालसा हो तो उसको चिन्मय वस्तु, भगवान जैसे चिन्मय है उनको चिन्मय समझ करके उसको ग्रहण करना चाहिए बड़े प्रेम से। 3 चीजें ये बच्चा ऐसा करता और कुछ ही दिनों में ऐसा उसको हो गया है, बिना संतों के रहा नहीं जाए। कुछ दिनों के बाद में 4 महीना बीत गया, वो लोग जाने की तैयारी करने, ये रोने लग गया। मैया के लिए नहीं रो रहा, रो रहा है उन संतों के लिए। संतों ने कृपा करके कहा जैसे तुम रो मत, तुमको एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र को तुम एकांत में चित्त को निविष्ट करके करना और इस विश्वास के साथ में ये भगवान है, ये मंत्र ही तुमको भगवान के रूप में दर्शन देंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। गुरु का काम है मंत्र रूपी भगवान को देना, किंतु हमको तो सहेज करके विश्वास के साथ में उसकी सेवा करनी होगी। यदि नारद ने जिस पद्धति से अवलंबन करके कुछ दिन में ही भगवान को प्राप्त कर ली उस मंत्र के द्वारा ही, तो हम भी कर सकते। हम कहते हैं गुरु जी और कुछ दीजिएगा, नारद जी ने नहीं कहा, उन्होंने एक मंत्र नारायण का दिया, बस सर्व विश्वास से उसने ग्रहण कर लिया। जब लोग चले गए तो ये मैया उसको गोदी में लेकर के चुप करा रही है, ले जा रही घर। सोचा जब मैया से कैसा पूछा चुके, मैं इस मंत्र को जप करके भगवत का दर्शन कैसे करूं। बहुत सी कथाओं को 4 महीने के अंदर में उन्होंने सुना और अपने हृदय में रख लिया, एक भी नहीं भूले। भगवान की ऐसी इच्छा हुई, व्यवस्था करने वाले तो भगवान हैं, जिन्होंने ऐसे ऋषियों से उनको मिलाया, उस छोटे से बच्चे को प्रसाद दिलवाया। वो किसी को प्रसाद नहीं देते, दिलवाया, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो और व्यवस्थाओं वो कैसे नहीं करेंगे। इसलिए उसकी मैया को एक सांप ने काट दिया और उसकी मैया उसी समय में मर गई और वो बड़े आनंद से मैया को वैसे ही छोड़ दिया और छोड़ करके चल पड़े। गभीर से गभीर वन में चलते ही चले गए, जहाँ बार बाघ भालू सांप इत्यादि सब रहते हैं, कोई परवाह नहीं। जाके राखे साइया मार न सकती है, और यदि सैया नहीं रखते तो घर में ही आकर के सभी कुछ उसकी मृत्यु हो जाएगी। घर में आयरन के में बंद रहे, कहीं सुराख न तभी वहां पर भी पहुंच करके वो मृत्यु उसे आलिंगन कर ले, कोई नहीं बचा सकता। मैया पड़ी रही और भगवान चले गए,
नारद जी से चले गए।
बच्चा चला गया, किंतु मैया की गति हुई कि नहीं हुई। जिसको उन्होंने मैया कहा है, आज जो गर्भ में धारण किया है और अपने बच्चे का स्मरण करते करते जो चली गई, उसकी कभी गति बंद हो सकती है। ऐसे भक्तों की 21 पीढ़ी के जितने भी हैं माता पिता और भाई बंधु सभी लोगों का उद्धार बिना भजन के भगवान कर देते हैं, इसलिए मैया की बाकी नहीं रही, इसलिए निश्चिंत होकर के चले गए। और वहां जाकर के ऐसे तन्मय होकर के भगवान का भजन आरंभ किया, नाम लेने लग गए धीरे 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 धीरे। अभी गड़बड़ मत करो, चुपचाप रहो। कुछ दिनों के बाद में तन मन की सूखी लगा दी, न किसी से बोलना, न चलना, न भोजन, न पानी, न कुछ। कुछ दिनों के बाद में मंत्र में से ही नारायण के रूप में आकर के और उनको दर्शन दिया। एक सेकंड के लिए झांकी दर्शन, जैसे कि बिहारी जी की झांकी होती है, झांकी देने के बाद में अंतर ध्यान हो गया। अब ये बच्चा रोने लगा, 5 वर्ष की केवल अभी उम्र है, रोने लग गए। प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मेरे प्राण निकल रहे हैं। जब बहुत भी बिलाने लग गए तो आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हाड़ मांस और रक्त से बना हुआ तुम्हारा शरीर है और तुम में कुछ अभी कमी है। भजन करो, हमारा नाम यही करो और जगत में चले घूमते रहो और दूसरों को भी इसमें भगवान के नाम में लाओ। और करते 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 एक दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके तुम हमारे पास में चले आओगे और फिर उस समय में तुम जहाँ चाहे विश्व में जाओ तुम चले जा सकते हो और सब समय हमारा दर्शन होगा। बस भगवान के आदेश को मान करके भगवान का नाम लेकर के पृथ्वी में पर्यटन करने लगे। इस आदेश को मानना है, गुरु ने कहा करना है हमको, यदि नहीं करते तो हमारा दोष है। मंत्र को मंत्र मत समझिए, साक्षात राधा और कृष्ण समझिए। हमारे जितने भी मंत्र हैं, गोपाल मंत्र है, चाहे महामंत्र है, चाहे काम गायत्री है, चाहे कोई भी, इसको साक्षात कृष्ण समझा जाए, राधा जी समझा जाए और परम विश्वास के साथ में इसको करना है। यदि नारद जी को नारायण का दर्शन हुआ तो ये इसको करने वाले सदगुरु से इसे प्राप्त करके करेंगे, बहुत जल्दी राधा कृष्ण का हम दर्शन करेंगे और उनका प्रेम मिलेगा, अवश्य संभावी मिलेगा। नारद जी कुछ दिनों के बाद में करते करते, ये समय क्यों लगा, कारण क्या था, इसका कारण था उनके अंदर में ये इच्छा थी, सात्विक की इच्छा, मैं निर्जन स्थान में बैठ करके भगवान की आराधना करूं। उन्होंने भगवान पर छोड़ नहीं दिया। यदि ये लालसा कोई भी रह गई, मैं निर्जन स्थान में रख करके उनका भजन करके उनको प्राप्त करूंगा, अच्छा तो कुछ दिन निर्जन में भजन कर लो। भगवान निर्जन में नहीं मिलते, सजन में भी नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, जहां पर प्रेम है उस प्रेम से वो मिलते हैं। बहुत से लोग निर्जन में भजन करना चाहते हैं तो वहां पर निर्जन कैसे होगा, वहां पर तो अपना मन भी तो रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे वहां पर, तरह तरह के पक्षी पशु जानवर वहां पर रहेंगे, निर्जन कहाँ रहेगा, इसलिए निर्जन है। इसलिए साधुओं की संगति में रह करके जितना जल्दी हो भजन करके कृष्ण को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके बाद में उनकी मृत्यु आई और मृत्यु को देखते देखते उसके सिर पर पैर रख करके और बैकुंठ में चले। इसके बाद में वो सर्वत्र पृथ्वी में घूमने लगे, क्या चाहिए भाई, नारद जी अब उस रूप में सर्वत्र जाते थे, वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक में, कृष्ण लोक में, सर्वत्र उनका गमन आगमन हुआ। एक समय में भारतवर्ष में सोचा, जे भारतवर्ष वैकुंठ से भी बड़ी है, भारत में से जहां गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, जहां पर वृंदावन है, यह वैकुंठ से भी बहुत ऊंचा है। वहीं पर कहीं कुटी बना करके रह करके भजन कर रहे थे। अब उनका वो भजन भजन साधन नहीं था, वो सिद्धावस्था का था, दूसरों को शिक्षा देने के। उस समय प्रजापति एक हुए, दक्ष प्रजापति, उन्होंने अपने बेटों को उनके पास में भेजा। नारद जी से कहा, जी हमारे बेटों को अच्छी तरह से पढ़ाना, जिससे कि ये संसार कर सकें और एक एक को एक एक हजार बेटे हूं और सुख संपत्ति से भरे रहे। उन्होंने कहा हमको जो आता है इनका कल्याण होगा वैसा ही करेंगे और उनको शिक्षा देने लग गए। पहली शिक्षा दी, बेटा ये अक्षर है लिखो, ओंग लिखा, ये अक्षर है प्रधान अक्षर, उसको कहते हैं ओम का, ये कभी विनाश नहीं होता। जगत में हम जो कुछ देखते हैं, बच्चों से कह रहे हैं, जो कुछ देखते हैं वो सब का विनाश हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, उसका बदल जाता है स्वरूप, किंतु इसका स्वरूप नहीं बदलता। इसका असल स्वरूप है राधा कृष्ण, इसमें मिले हुए हैं, अ उ म अक्षर देर पढ़ा रहे हैं, अ उ और म मिलकर के ओम, अ माने अकारणे उच्यते कृष्ण, इसका कभी विनाश नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, जन्म जैसा दिखता है किंतु इसका जन्म नहीं। और उनकी शक्ति राधा जी है, उ माने श्रीमती राधिका जी, और म जीव वाचक, जितने जीव हैं सब उनसे निकले हुए हैं, वो जीव है, वो है म, तीनों मिलकर के ये ब्रह्म होता है। भगवान जैसे अक्षर हैं उनका विनाश नहीं होता, उनकी शक्ति का भी विनाश नहीं होता, जीवों का भी विनाश नहीं होता। जो जीव राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, माया उनको पकड़ करके फेंक देती है इस संसार में, ऐसे ही नहीं फेंकती, इसको दो कपड़े पहना देती है, एक स्थूल कपड़ा और एक सूक्ष्म कपड़ा। स्थूल कपड़ा ये है शरीर, और इसके अंदर में एक और मन बुद्धि अहंकार का शरीर है, सूक्ष्म शरीर। ये दो शरीर अवणों के अंदर में पकड़ करके बांध करके इसमें हथकड़ी और बेड़ी लगा दी। वो क्या है हमारे लिए, तो लोहे की या किसी धातु की हथकड़ी बेड़ी होती है। उन्होंने ममता की आसक्ति, आसक्ति जो ममता होती है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा पद है, ये सब आसक्ति, इसकी बेड़ी ऐसी बना दी, टस से मस नहीं हो सकते, ऐसी बेड़ी पहना दी। ऊपर वाला शरीर खत्म होने पर भी भीतर वाला जो शरीर है सूक्ष्म, वो नहीं छूटता, जिस समय वो छूट जाएगा मुक्त हो जाएगा जी, मृत्यु के बाद में यह शरीर बदल जाएगा, किंतु मन बुद्धि वाला नहीं बदलेगा। उसी पर जगत की कर्मों की छाया पड़ती है, और जो जो आप कल्पना करते हैं, मन में सोचते हैं, वो इसका रील बन जाता है, और जब तक वो रील साफ नहीं होगा कर्म के किए हुए फल को भोगने से, तब तक जन्म मरण का नहीं नहीं रूप में होता। अभी जो आप लोग हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी प्रकार की कामनाएं किए हैं, जो अभी पूरी हुई या नहीं हुई, वो सब रील बन करके जमा है, कोटि कोटि जन्म लग जाएगा इसका भोग करने में, और ऐसा ही चक्र चलता रहेगा, उसे निकलना बड़ा भारी कठिन, 99 का फेर है, इधर से घूमो उधर से भीतर से उधर बाहर में नहीं निकल, ये माया का फेर है। बस एक ही उपाय है, भगवान के भूलने से इस संसार में हम आए हैं, फिर भगवान को स्मरण हो, फिर भगवान के पास में। कारण क्या है इस जगत में आने का? भगवान का भूल। भगवान के पास कैसे जाएंगे? उनका स्मरण कर। कैसे स्मरण होगा? नाम के द्वारा, बिना नाम ग्रहण किए नहीं हो सकता। इसलिए गुरु सबसे पहले कृष्ण का नाम देता है मंत्र के रूप में, वो मंत्र नहीं बल्कि कृष्ण ही है। अभी हम किसी को बुलाए, मान लिया कि जैसे सड़क पर है, 10 माइल दूर है, 1000 मील दूर है, 10,000 मील दूर है, बुलाओ आएगा? नहीं आएगा। और कृष्ण को बुलाओ तो वो करोड़ों माइल दूर है किंतु एकदम निकट है, निकट से निकट और दूर से दूर है। जो नहीं बुलाते उनके लिए दूर, जो प्रेम से बुलाते हैं उनके लिए बस यहीं पर है। इसलिए कृष्ण का नाम इतना सबल है, शक्तिशाली है। जहां से रहो, जिस रूप में रहो, उनको बुलाया कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस राधा जी के साथ में वो उपस्थित। कलिकाल में इसे बढ़कर का और कुछ नहीं है। उस समय में भी उन्होंने, नारद जी ने कहा, भगवान का नाम करो, माया मोह ममता को काटो। माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। मैं और मेरा, तेरा तू और तेरा, तू और तेरा, और मैं और मेरा, तुम्हारा अलग मेरा अलग, ये मायाबद्ध है। होना चाहिए क्या? दोनों में से एक एक शब्द ले लो, उधर का तू ले लो, इधर का मेरा ले लो, तू मेरा, ऐसा करो। इस तरह से हम सभी भगवान के हैं, इसलिए संसार का कोई भी किया हुआ चीज साथ में नहीं जाने का, ये वृथा परिश्रम करके क्या लाभ है, और इसे सुख भी नहीं होगा। बेटा पालता है पुत्र को, मुझे सुख देगा। आज जब बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपना सुख चाहता है, तो बाप को बड़ा कष्ट होता है, जो हमारा तो सुख दुख देखा नहीं, अपना देखने लगा। अरे ये जगत की रीति है, इसमें तुम प्रसन्न रहो। और जब वो बेटा बाप हो जाएगा ना, तो वो सोचेगा जब बेटा हमारी सेवा करे, फिर उसके लिए भी ऐसा ही होता है। ये जगत के प्रारंभ से और जब तक जगत रहेगा तब तक ये रहेगा, कोई हटा नहीं सकता, ये माया है। इसलिए वो मूर्ख व्यक्ति है जो इस जगत में सुख चाहता है। सुख तो वही होगा जब कृष्ण को अपना मान, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे सखा हैं, वही मेरे बेटे हैं, और वही हमारे प्रियतम हैं। कृष्ण से संबंध जोड़ो और ये संसार का संबंध काटो। कभी मत आशा रखो किसी से ये हमें सुख देगा। कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई भी सुख देने वाला नहीं है और दुख देने वाला भी नहीं है, इस चीज को समझो। इसलिए प्रारंभ से ही आशा को काटो। क्या आशा? इससे मुझे सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसमें गारंटी है। गारंटी होगा किसमें सुख की? कृष्ण का भजन करो, इसमें गारंटी है। शास्त्रों ने गारंटी दी। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यदि तू हमारा भजन करता है क्या होगा? मां सुचा, शोक मत करो, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। तुम्हारा सब कष्ट मैंने ले लिया, और सबका छोड़ने का जो पाप है उसको भी मैंने ले लिया, और तुमको चिर जीवन के लिए सुखी बना दूंगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम हमारे सखा हो, तुम हमारे प्रिय हो, मैं ही तुम्हारा एकमात्र हूं। तुम जब से भूले हो तब से ये कष्ट पा रहे हो। शास्त्र के द्वारा भगवान स्वयं अपने मुख से कभी राम के रूप में, कभी निशिंग के रूप में, कभी स्वयं कृष्ण के रूप में, बलदेव के रूप में, कभी वामन देव के रूप में, परशुराम के रूप में, निशिंग के रूप में, सभी समय यही एक शिक्षा देते हैं। उन्हीं के लिए जगत में आते हैं, और तब भी उनकी बातों को सुन करके हम कोई अमल नहीं करते हैं, ये हमारी मूर्ख। बहुत से लोग तो सुनते ही नहीं है, और जो सुनते भी हैं वो करते नहीं। इस तरह से बतलाने पर उनको बड़ा भारी बैराग्य हो, कोमल हृदय था। अभी उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, कागज कोरा था। इसलिए जो नारद जी ने लिख दिया वो पूरा ठीक हुआ। वो 10-20 वर्ष तक उनके यहाँ रहे। अब इसके बाद में गुरु जी को प्रणाम करके बोले, अब मैं चल रहा हूँ, ठीक जाओ। और वो चले गए कहाँ? भगवान का भजन करने के लिए और सिद्धि पाने के लिए। अब तक तो उन्होंने ज्ञान के रूप में ग्रहण किया, अभी विज्ञान नहीं हुआ। गुरु जी से हम जो कुछ ले रहे हैं अभी ज्ञान ले रहे हैं, और अपने साधन के द्वारा उसे हम विज्ञान बनाएंगे। विज्ञान माने क्या? अनुभूति। नारद जी ने अपने गुरु से लिया मंत्र, और जब साधन किया तो विज्ञान हुआ, उन्होंने सब देखा। हम लोगों ने गुरु जी से ये ज्ञान लिया है, और उसके लिए साधन करके हम इसको विज्ञान के रूप में परिणत करके कृष्ण की सेवा जब पाएंगे तब ये विज्ञान हो जाएगा। नारद जी ने कहा, जैसे एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा विज्ञान हो। वो चले गए, पिता के घर में नहीं लौटे।
उसे आशा थी कि हमारे एक एक बेटे को 10-10 हजार बेटा होगा और संसार में फिर उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के इससे संसार सब भर जाएगा, प्रजाएं हो जाएंगी। कुछ नहीं हुआ, बेटा लौटा ही नहीं। एक वर्ष देखा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 25 वर्ष जब पूरा हो गया, खबर लिया गुरु जी के आश्रम में, नारद जी कहाँ है देखो तो पता लगा जो यहाँ है। खुद आया, हमारे बेटे कहाँ गए? उनको पढ़ा दिया तो हाँ पढ़ा दिया, कहाँ गए? लौट गए। अरे लौटे कहाँ? तो लौट गए, मैं कहाँ कहूँ, जहाँ से आए थे वहाँ गए, लौट गए। वो सीधा नहीं बोलेंगे, कहाँ से जीव आया? प्रभु के को छोड़ करके आए हैं, तो वहाँ पर चले गए जहाँ से अब लौटना नहीं है, वो भगवान का भजन करने चले। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? कहीं कहीं पर लोग कहते हैं, लोगों की धारणा ऐसी है, यदि किसी गुरु के पास में कोई छोटा सा बच्चा जाता है, कोई बच्चा जाता है, कोई महिला जाती है, कोई व्यक्ति जाता है, यदि कोई महिला जाती है, गुरु जी हमको मंत्र दीजिए, तो कहीं कहीं पर ऐसा लोग कहते हैं कि उसको पूछना चाहिए उसके पति से, उसके बाप से, उसके किसी जो जानने, उसके जो रक्षा गार्जियन से पूछना चाहिए, भाई मैं इनको मंत्र दे रहा हूँ, इनको भगवत भजन की कृपा। नारद जी ने किया? नहीं करते। क्यों? वो उसका कल्याण नहीं जानते, घर वाले कल्याण नहीं करेंगे, उनको नरक में डुबाए रखेंगे। इसलिए देखा जैसे सुयोग मिला तो ऐसी विद्या पढ़ाई परमार्थ की, अक्षर की, जो अक्षर स्वर्ग भगवान है उनके चरणों की भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। ध्रुव जी जबकि अपना राज्य छोड़ करके आए, पिताजी ने उसको गोदी में नहीं लिया, और छोटा सा 5 वर्ष का नंगा लड़का जब पिता ने गोदी नहीं ली, तो क्षत्रिय का रक्त तो रोने लग गया। पिताजी ने उत्तम को, हमारे छोटे भाई को गोद में लिया और मुझे गोद नहीं लिया। रानी ने कहा, उसकी मैया ने उत्तम की सुनीत सुरुचि, तुम मरो, अमर करके हमारे घर में आओ और तब फिर जन्म लो, तब इस गद्दी पर बैठना, ऐसे नहीं सुनीति के गर्भ से बैठा तुम जो जन्म लिया, तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम गोदी में नहीं बैठ सकता राजा। क्षत्रिय बालक क्रोध से भर गया, रोता रोता मैया के पास में गया, मैंने क्यों रो रहा, पिताजी ने गोद में नहीं ली। अरे तुम करो, पिता के गोद में बैठो, श्रीहरि के गोद में बैठो, कैसे मैया बैठूं? अरे वो तुम्हारे सर्वस्व पिता तो वो हैं, जो कि विश्व ब्रह्मांड का राज्य तुमको हथेली में दे देंगे, ये क्या देंगे, ये तो भी मर जाएंगे और राज्य भी चौपट हो जाएगा, राज्य कहाँ मिलेंगे? अरे जमुना के किनारे चले जाओ, वृंदावन में, मथुरा में चले जाओ, वहां पर सब समय हरी रहते हैं, जत्र सन नहीं तो हरी, मथुरा छोड़ करके कहीं नहीं जाते आप, वृंदावन की जो श्याम सुंदर है वो वृंदावन को छोड़ करके, वृंदावनम प्रत्यज पादम एकन गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाते, तुम जाओ श्री हरि कमल लोचन जो हरि हैं उनकी आराधना, मैं आराधना तो जानता नहीं, तुम जाओ तो बस रात में उठा चले। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारा बेटा हमको छोड़ करके और रात में ऐसे चले जाएगा, रात में उठा और सरल विश्वास के साथ में निकल गया वृंदावन में, पहुंच करके मथुरा में पहुंचा, वहाँ एक ध्रुव घाट है जहाँ पर उन्होंने जमुना में स्नान किया, जहाँ पर मरने के बाद में लोगों को जलाते हैं, उसके पास ही में कहीं है, वहीं पर जाकर के जमुना में स्नान किया, और जब ही स्नान किया त्यों ही नारद जी बिना जन्म लिए हुए राधिका नाम, राधा कृष्ण का नाम जपते हुए, नारद मजाए बिना राधिका नाम, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नारद जी वहां से खड़ा पहने हुए बिना बजाते हुए बड़े मधुर स्वर से, वहीं बच्चा उनको देख करके श्रद्धा से भर गया उनके चरणों में प्रणाम। अरे तू किसका बेटा है? तू कानपात का लड़का है? कि जी हाँ मैं उनका बेटा। उन्हें सोचा ये बालक ये कैसे जान गया ये ऋषि हमारे बाप का ना? अरे तू घर से चला आया क्रोध में भर करके छोटा सा बालक, छोटे से बालों के इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे पिताजी आज नहीं तो कल तुमको गोदी में लेंगे, तो लौट जाने तो अभी तुमको बाघ खा जाएगा, सिंह खा लेंगे, सांप काट देंगे, जल्दी चलो घर में जाओ। तो उसने कहा हमारे कुल की रीति है क्या, प्राण जाई बरु
प्रतिज्ञा ना जाई,
प्राण भले ही चला जाएगा किंतु मैया ने मुझे कहा मैं कमल लोचन श्री हरि का भजन नहीं करूंगा। मैंने जाओ जाओ घर में, अभी छोटा सा बच्चा इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, लौट जा। कहे अब घर में नहीं लौट सकता, जो होना है सो हो। अरे भाई भजन ऐसे होता है, यदि पांच वर्ष का ध्रुव ऐसा कहता है जो होना है सो हो, मैं तुमका जरूर भजन करूंगा। नारद जी ने बहुत कुछ कहा, डराया धमकाया सब कुछ। जब देखा जे नहीं जाएगा तो परीक्षा में जब पास हो लिए तो बोले जाजा इधर स्नान करके आया है तहां, बस कान में मंत्र दे दिया जाओ इस मंत्र को जपो, बस उसकी विधि बतला दी। तुम एक महीना बिना खाए पिए रहेगा अथा रह जाओ, दो महीना, तीन महीना यदि बचा रहूंगा तो करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पिएगा तो नहीं, कितना दिन आप जितना दिन कहेंगे, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, आपकी बात से मैं तिल भर भी इधर उधर नहीं होऊंगा। गुरु चाहता क्या है, यही चाहता है ना, मैं जो कहता हूं तू करेगा कहां, प्याज लहसुन नहीं खाएगा? राम राम मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, मांस मछली डिम खाएगा, अंडे नहीं, मैं जैसा कहता हूं करेगा तहां करेंगे, जो कुछ कहूंगा तो जो कुछ, प्राण देने के लिए तो प्राण अभी तैयार है, ये शिष्य है, जैसा गुरु चाहता है वैसा करना, इसका नाम शिष्यत्व है। गुरु जी ने कहा पूरब चलो, हम चल रहे हैं पश्चिम। गुरु जी ने कहा देखो सोना कम और दिन में भजन करना, करेगा? हाँ, और दिन में सोने लगे। अच्छा देखो संसार में मोह मत रखना, ममता मत रखना, आसक्ति मत रखना, कर्तव्य के लिए कुछ करना, नहीं तो जीवन का निर्वाह नहीं होगा, इसलिए तुम ये सब करना, किंतु ममता तुम्हारी कहां रहेगी? भगवान शिष्य ने पूछा जी कैसे होगा? अरे एक पति और पत्नी में बड़ा प्रेम है, पति परदेश गया काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए काम करता है, किंतु उसका मन कहां है? अपनी पत्नी और बेटे में है? अमेरिका गया है, इंग्लैंड गया है, कलकत्ता गया है, और किसके लिए वो कमा रहा है? उनके लिए। एक कलकत्ते में एक गरीब आदमी गया काम करने, उसका बच्चा एक छोटा सा था, उसकी बीवी थी, वहां पर चटकल में मजदूरी का काम मिला, दिन भर मजदूरी करता था, बड़े कठोर परिश्रम, और उसको 10 या 15 रुपए उसे मिलते थे, उसमें से वो सड़क के किनारे सो जाता और बोरा चटकल में काम करता, बोरा मिल जाता नीचे बिछा देता, उसको ओढ़ लेता और सत्तू खरीद करके खा लेता, बड़ी मुश्किल से वहां पर 7 रुपए बचा लेता, 7 रुपया खर्च होता, और 7 रुपया क्या करता? घर में भेजता। लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये 7 रुपया इतना बड़ी, तुम खाता पीता नहीं है, कुछ नहीं करता, और इतना कठोर परिश्रम से ये कमा करके और घर भेज देता है, इसमें तुमको क्या आनंद है? आनंद की बात मत पूछो, हमारा छोटा सा एक बच्चा है, मैं ये भेज देता हूँ और घर में लिख देता हूँ कि इसके लिए गाय का थोड़ा सा दूध देना और बच्चे को अच्छा सा कपड़ा बना देना, और घर से आता है जब बेटा हमारा बोलने लगा, माँ 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 कर रहा, और बड़ा तंदुरुस्त है, और उसको दूध खिलाया जा रहा है और कपड़े भी अच्छे पहनाए जा रहे हैं, ये सुन करके हमको जो आनंद आता है, त्रिलोकी का आनंद हमको इसी में मिल जाता है। यदि ऐसा वो है तो वैसा हम अपने घर का काम करते हुए भगवान अपने चित्त को क्यों नहीं दे सकते? ऐसे ही करना चाहिए, कर्तव्य के लिए वहां काम कर रहा है किंतु उसका मन यहाँ पर है। ऐसे ही कृष्ण को अवचित्त दे करके कर्तव्य के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कुछ करना चाहिए। अधिक मत करो नहीं तो फंस जाओगे, ये भी ठीक रखना। इस तरह से नारद जी का बतला रहा था ना, ध्रुव जी का, तो नारद जी उससे कहा जब हम करेंगे करेगा तो हम करेंगे, बस उसके कान में मंत्र दिया, जाकर के जमुना में स्नान करके निर्जन स्थान में थोड़ा और चले गए, जिसको कहते हैं मधुबन, वहां चले गए और वहां पर एक टिल्ले पर बैठ करके मंत्र जपने लगे। एक महीने में उन्होंने 7 दिन अंतर में कुछ पत्ते जो गिरते हैं वो पत्ते खाए, दूसरे महीने में पत्तों को भी छोड़ दिया, 15 दिन के बाद में खाने लगे, तीसरे महीने में पानी भी छोड़ दिया, पानी पीने लगे केवल, चौथे महीने में पानी भी छोड़ दिया, पांचवें महीने हवा को भी छोड़ दिया, 15 दिन अंतर लेते थे, छठा महीने में इसको भी छोड़ दिया, छठे महीने में भगवान ने दर्शन दिए। यह नारद जी की कृपा है। उसके पिताजी से उन्होंने आदेश लिया जो 5 वर्ष का बच्चा भी नाबालिग है इसको मंत्र दूं कि नहीं दूं, कहा और जब उसका मंगल कर रहे हैं, नहीं समझने वाले लोग नहीं समझते हैं, इसलिए वो तो रोएंगे घिघियाएंगे, वो समझते कि जैसे हम नरक में पड़े हुए हैं हम वो भी पड़ा रहे, ये अज्ञानी है वैसा ही अज्ञानी रहे। किंतु सचमुच में जो माता पिता भाई बंधु होते हैं अपने परिजनों को, अपने बेटों को, अब सबको भगवान का हरि नाम दिलाते हैं। दक्ष प्रजापति ने दूसरी बार कहा, अच्छा इस बार तो तुमने जो कुछ किया अब की बार मत देना, इनको अच्छी तरह से पाठ पढ़ाना जिससे कि उनको शादी हो और मेरे अनुसार में अपने बच्चे इत्यादि करें और जगत को प्रजाओं से भर दें। उन्होंने कहा जो मंगल हो इनका। फिर उन्होंने 1000 बच्चों को भेज दिए, कुछ दिन रहे और फिर शिक्षा देने अक्षर से आरंभ किया और उसको भगवत प्रेम तक ले गए। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम कैसे आएगा? पहले श्रद्धा आएगी, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, कैसे आएगी? इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। 25 वर्ष तक इनको शिक्षा दी और वो भी संसार छोड़ करके चले गए और भगवान का भजन करने लगे। इसके बाद में उसने अभिसंपात किया, तो हमारे लड़कों को बिगाड़ दिया, उन्होंने सोचा जी बिगाड़ दिया, ब्रह्मा जी रहते शंकर जी रहते तो क्या कहते, बिगाड़ दिया ना, वो क्या कहते इसका जीवन तुमने बना दिया। जो साधु पुरुष रहे कहेंगे उसका जीवन बना दिया तूने, किंतु वो नहीं समझता है। वो समझता है कि मेरे बेटे हैं, इनका जीवन बेकार कर दिया, न राजनीति करेंगे, न धन कमाएंगे, न कुछ करेंगे, न बेटा बेटी इनके हो गए, विवाह भी नहीं, इनका जीवन वृथा गया। एक बुढ़िया है 100 वर्ष की, जीवन में उसे कोई सुख नहीं मिला, उसके पति भी मर गए 90 वर्ष की उम्र में और बेटे नाती उसको झाड़ू से पीटते हैं और उसको एक नाती है, तो बुढ़िया क्या चाहती हमारे नाती की हमारे रहते हुए ही शादी हो जाए और कुछ नहीं मांगेगी। अरे ये कहती जी इसको भगवत भक्ति हो जाए, कोई साधु संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए और इसको संसार से दुख करके भगवान के चरण में लगे, ये नहीं कहेगा, न कहेगी कोई। नारद जी का ऐसा ही है, एक दो को नहीं लाखों लोगों को, ऐसे चतुर हैं कि छल से बल से जैसे तैसे लोगों को भगवान के तरफ में लाते हैं। एक देखा एक लड़का गर्भ में है, बड़ा अच्छा लड़का है, सुंदर सा, वो कौन है?
प्रह्लाद।
अभी गर्भ में माता के उसी पर उसकी नजर पड़ गई, इसको भगवान के तरफ से मुड़ना है, कैसे मुड़ा जाए? हिरण्यकश्यप में और देवताओं में लड़ाई छन रही थी, हिरण्यकश्यप अपना शरीर को वज्र बनाने के लिए और कभी नहीं मरूं, अजर अमर बन जाऊं, इसलिए वो तपस्या करने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या किया। इंद्र को मालूम है ये तपस्या करने चला गया है, आरंभ कर दिया है, उसका दुर्धर्ष पुत्र होगा, अभी गर्भ में है, अभी चढ़ाई करके इसको खत्म कर देना है, माता के गर्भ से निकाल करके उसको भी काट देना है। तो महिला को तुम्हारा नहीं जा सकता, इसलिए उसको पकड़ लिया, पकड़ करके लेकर के स्वर्ग में जाने लगे, जब ही इसको पैदा होगा वो उस समय काट डाले। नारद जी ऊपर से बिना बजाते हुए देख करके आए, अरे इंद्र क्या कर रहा है, इस महिला को किस लिए पकड़ रखा, अरे इसमें हिरण्यकश्यप का वीर्य है, बेटा है, ये जन्म लेगा तो संसार में दोनों हिरण्यकश्यप हो जाएंगे, उसे भी बलवान अधिक होगा, इसलिए इसको काटेंगे हम, अरे इसमें भगवत भक्त है, छोड़ो। नारद जी की बात को टालने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उसकी प्रदक्षिणा की और छोड़ दिया, वहीं से गिरे तो भी मर जाए। नारद जी ने अपने तपोबल से उनको और अपनी बेटी बना करके ले आया आश्रम में। अरे घर जाएगी, अब घर जाएंगे तो देवता लोग फिर मारेंगे, मैं आपके पास में रहूंगी, सुरक्षित रहूंगी, तो ठीक है, पास में एक कुटी बना दी। 60,000 वर्ष तक उनको हरि कथा सुनाई। क्यों 60,000 वर्ष? उसने कहा था उनकी सेवा की नारद की कुछ, उनके घर में झाड़ू, उनके कुटी में झाड़ू दे देती, फूल चुन करके ला देती, लकड़ियां ला देती, पानी भर देती, बड़े प्रसन्न हो गए। कहो तुम क्या चाहती हो? तो हमारा बेटा जब हम चाहें तभी जन्म ले, ऐसे ना ले। ठीक है, उसकी इच्छा थी जो हमारा स्वामी आ जाएगा हिरण्यकश्यप, तब इसका जन्म हो, तो ऐसा ही हुआ। 60,000 वर्ष तक छल से बल से कल से उसको वहीं पर रखा और प्रहलाद महाराज जी को लक्ष्य करके घर में और हरी कथा बोलते रहे। आदेश लिया हिरण्यकश्यप से, न किसे आदेश लिया, कल्याण करने में आदेश करने की कोई जरूरत नहीं होती, जो नहीं समझते हैं ऐसा का, इसलिए उन्होंने क्या किया, 60,000 वर्ष जो कुछ